हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और आप टॉपिक देख के समझ ही गए होंगे कि आज काफ़ी चीज़ों पे बातचीत होने वाली है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टॉक मार्केट के साथ। स्टॉक मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल चल रही है कि यकीन ही नहीं हो रहा है। आप देखोगे विक्स जो है इंडिया का या इवन ग्लोबल मार्केट्स का बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। विक्स के अंदर एक अलग ही रैली आई है। तो विक्स क्या होता है? आपका वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, जिससे आपको पता चलता है मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ? वॉलेटिलिटी का मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, मार्केट बड़ी इनडिसाइसिव है, मार्केट को समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट गिर रही है तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी या मार्केट बढ़ रही है तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। वॉलेटिलिटी तब बढ़ती है जब मार्केट डिसाइड नहीं कर पाती कि मैं ऊपर जाऊँ या ऐसे नीचे आऊँ। तो इस समय यही हो रहा है कि विक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। विक्स के बढ़ने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टर्स ही फंसे हुए हैं, मतलब ट्रेडर्स भी पैसा नहीं लगा पा रहे, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। मैं भी अगर सुबह सोचता हूँ कि मार्केट को शॉर्ट करूँगा क्योंकि कोरोना वायरस का फियर है, रिसेशन का फियर है, ऑयल प्राइस चल रही है, ऑयल की वॉर चल रही है प्राइसिंग के ऊपर, तो मैं भी शॉर्ट नहीं कर पाता। और आज आप देखोगे जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11 मार्च को होली के अगले दिन, तो एक्चुअली सुबह मार्केट ऊपर थी, 200-250 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर था, देन वो फ्लैट हुआ, फिर वो 200 पॉइंट नेगेटिव गया, उसके बाद वो अगेन फ्लैट हुआ, उसके बाद वो 50 पॉइंट नीचे आया। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है और ये सारी वॉलेटिलिटी आपको विक्स के अंदर दिखती है। तो जब तक विक्स बहुत हाई है तो नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं मार्केट से बाहर बैठना, मार्केट से पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, भाव भगवान है वही वाली बात हो जाती है। जब तक भगवान कह रहे हैं कि आप दूर रहो मार्केट से, तब तक हम दूर ही हैं। तो गाइस, विक्स के बाद अब हम समझ लेते हैं कि जो क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइसिंग वॉर चल रही है वो एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुई। तो आपको पता है चाइना के अंदर तो स्लंप आ ही रखा है, कोरोना वायरस के चक्कर में सारी प्रोडक्शन वहाँ बंद पड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ठप पड़ी हैं। तो क्योंकि इकोनॉमी बंद पड़ी है तो ऑयल की डिमांड कम हो गई है ग्लोबली। ऑयल की डिमांड कम होने से इसका जो प्राइस था वो क्रैक होना स्टार्ट हो रहा था। तो ओपेक ने मीटिंग बुलाई कि भैया हम कर देते हैं इसको प्रोडक्शन को कम, प्रोडक्शन कम करेंगे तो हम प्राइस कंट्रोल कर पाएंगे। इस पर रशिया कहता है कि हम तो प्रोडक्शन कट नहीं करेंगे, हमें तो अपने हिसाब से चलना है, हम आप लोगों की नहीं सुनेंगे। अब रशिया ने यह बोला, सऊदी ने कहा कि अगर तुम सस्ता तेल बेचोगे तो हम तुमसे भी ज़्यादा सस्ता बेचेंगे, हम तुम्हें भी बिठा देंगे। तो ऐसे प्राइस वॉर शुरू हो गई क्रूड ऑयल को लेके। तो इंडिया के लिए तो देखा जाए तो पॉजिटिव है, बट ग्लोबली ये सारे जब बेयर मार्केट चल रही होती है तो रिसेशन का ही सिग्नल होता है। तो आप देखोगे मतलब ये स्लंप और बढ़ा देगी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि जो भी ऑयल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब के अंदर अगेन ग्रोथ नहीं आएगी, उन सब के अंदर डिमांड नहीं होगी, वो लोग केपेक्स नहीं कर पाएंगे। तो और स्लगिश डिमांड और स्लगिश प्रोडक्शन तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। जो रिसेशन की ओर इंडिकेशन हमारे जा रहे हैं, इंडिकेटर्स जो सब सजेस्ट कर रहे हैं कि रिसेशन आएगा आएगा, वो आता हुआ अब हमें दिख रहा है। तो क्रूड ऑयल आपने देखा होगा 25% टूट गया एक ही दिन में, 25% का फॉल इज बिग। तो 25% ये जिस दिन गिरा क्रूड ऑयल, उस दिन आपने देखा होगा इंडिगो वगैरह के शेयर्स ही ऊपर थे कि भैया क्रूड ऑयल गिर गया है, बीपीसीएल एचपीसीएल ऊपर थे, जो ओएमसीज हैं सारी कंपनीज कोलैप्स कर गई। और इसी कोलैप्स से हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इसलिए गिरा क्योंकि क्रूड ऑयल क्रैश कर गया। अब वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, वो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनी है, तो जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं इनको नुकसान होता है। आपको पता होगा कि आप ऑयल कंपनीज को नॉर्मली दो ब्रैकेट्स में डाल सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देखते हैं जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, और बाकी जो भी कंपनीज हैं ओएनजीसी, रिलायंस, ये सारी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं। तो इनका बिल्कुल इनवर्स रिलेशन चलता है, क्रूड ऑयल गिर रहा है इट्स गुड फॉर ओएमसीज, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है इट्स गुड फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज। तो इस चक्कर में एक क्रैश तो आया रिलायंस के अंदर। एक और रीज़न जो था क्रैश का वो यही था कि सऊदी अरामको जो खुद इन्होंने सऊदी अरेबिया की जो कंपनी लिस्टेड है यार, ये आईपीओ प्राइस के नीचे चली गई। और ये क्यों गई? अगेन ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है वहाँ पे, और क्रूड ऑयल अब आपने तोड़ दिया तो आपने खुद की कंपनी की भी कमर तोड़ दी। और दिक्कत क्या हो रही है कि अगर ये सऊदी अरामको के अंदर रिवाइवल नहीं आता और ये बाय चांस कह दे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है या हमारा जो नेटवर्थ है वो कम हो गई और उस चक्कर में हम आपका जो 20% स्टेक खरीद रहे थे रिलायंस में ऑयल डिवीजन में, पेट्रोलियम डिवीजन में, वो नहीं खरीदेंगे, तो रिलायंस के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हो जाती है, वो जीरो डेट कंपनी बन ही नहीं पाएगी। तो ये सारे फियर्स प्ले आउट कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके। और अगर ये सारे फियर सच होते हैं तो डेफिनेटली हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर एक अच्छी करेक्शन आती है। बट मुझे यही लगता है कि मुकेश अंबानी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो इस चक्कर में हमें लगता नहीं कि दिक्कत आएगी उस बड़े स्केल की। बट हाँ, अगर सऊदी अराम को कह दे कि हम पैसा नहीं डालेंगे तो नहीं डालेंगे, कौन उनको फोर्स कर सकता है? और अगर वो पैसा नहीं डालते तो ऑब्वियसली ये जो मुकेश अंबानी का एक बड़ा प्लान था कि जियो को जीरो डेट बना देंगे एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लगा के, और मतलब बड़ी सारी लेयर्स इन्होंने खोल रखी थी, उन सबको इनको बंद करके कुछ और सिचुएशन देखनी पड़ेगी। और जियो के पास डेट इतना ज़्यादा है कि अगर वो जीरो डेट नहीं बनाते उसको, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी बैंक्स ने इनको पैसा दिया हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं सबके चहीते येस बैंक के ऊपर। तो येस बैंक का जो शेयर है वो धीरे धीरे करके अब ऊपर जा रहा है। आप देखोगे 10-20% रोज भाग जाता है, बट जो शेयर 400 रुपये से नीचे 20 रुपये पे आ गया उसके ऊपर 10-20% भागेगा तो हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं। जिस दिन वो एक्चुअली क्रैश हुआ था, जिस दिन RBI ने विड्रॉल लिमिट लगा दी थी कि आप 50,000 रुपये से ऊपर नहीं निकाल सकते, उस दिन आपने देखा होगा शेयर लोअर सर्किट मारता गया। इवन फ्यूचर्स में सर्किट नहीं होते, बट वो सर्किट ब्रेकर एक देते हैं आपको, वो 8 रुपये या 7 रुपये जाके उसके बाद घूमा था और 16 रुपये के अराउंड बंद हुआ था। SBI के अंदर 10 रुपये पे स्टेक उठा रही है, और भी पैसा डालेंगे उन्होंने बोला है, 49% स्टेक उनके पास रहेगा, ये उसकी सब्सिडरी की तरह फंक्शन करेगा, एक इंडिपेंडेंट कंपनी रहेगा, इसको मर्ज नहीं करेंगे। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं येस बैंक के लिए, बट अगेन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसी सिचुएशन में आप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ रहें। देर आर हाई चांसेस कि इन्वेस्टर्स या कह लो क्या डिपॉजिटर्स येस बैंक में वापस लौट के नहीं आएंगे। अगर आज मेरे बैंक के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो फिर मैं यही सोचूंगा कि जब लिमिट सारी खुल जाए और मैं विड्रॉ कर सकूं तो मैं भाई कहीं और पैसा रखूं अपना, किसी और बैंक में अकाउंट खुलवा लूं। और इसके बेनिफिशियरी अगेन हमें कौन दिखते हैं, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI, ये 5 बैंक्स मुझे बहुत बड़े बेनिफिशियरी लगते हैं इस चीज़ के। और देखते हैं हम कैसे प्ले आउट होता है। मैंने अपने जो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक उसमें तो पता किया है, तो लोग वही कह रहे हैं कि क्वेरीज बहुत बढ़ गई हैं कि लोग चाह रहे हैं अकाउंट खुलवाना, लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका बैंक तो सेफ है, इस बैंक में पैसा डालेंगे तो डूबेगा तो नहीं। तो इन सब क्वेरीज को चलते मुझे लगता है कि जो बड़े बैंक्स हैं वो अगेन मार्केट शेयर खींचेंगे। अब कोटक महिंद्रा बैंक से एक और न्यूज़ निकल के आई है कि मिस्टर उदय कोटक ने कहा है कि हम लक्ष्मी विलास बैंक को बचा लेंगे, हम उसको टेक ओवर कर लेते हैं, हम उसको खरीद लेते हैं। 450 करोड़ की मार्केट कैप रह गई है लक्ष्मी विलास बैंक की, और मुझे लग रहा है कि उदय कोटक का ये बहुत ही स्मार्ट मूव रहेगा। यहाँ पे साउथ इंडिया में वो डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, और इसको चलते ही जो उनको अपना स्टेक डाइल्यूट वगैरह करना है, हो सकता है वो RBI की नज़र में थोड़ा गुड बॉय बन जाए उधर। हमें इतना तो पता है कि मिस्टर उदय कोटक को अपना स्टेक कम करना था कोटक महिंद्रा बैंक में, और उसको करने के लिए उन्होंने अलग वोटिंग राइट्स के शेयर्स निकाल दिए थे ताकि उनका वोटिंग स्टेक डाइल्यूट हो जाए। तो उस चक्कर में उन्होंने कहा मेरा वोटिंग राइट तो कम हो गया, RBI ने कहा नहीं आपको स्टेक ही कम करना है, वोटिंग राइट कम करने से नहीं होगा। केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, एंड में RBI ने कहा कि अच्छा ठीक है आप अपने हिसाब से करो, हम आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं और इसको कम करने की। रिसेंटली उन्होंने कहा था लक्ष्मी विलास बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की हम मर्ज होना चाहते हैं, उसका इन्होंने मर्जर रोक दिया, RBI ने बहुत ही सेंसिबली रोका गया, क्योंकि दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हालत अच्छी नहीं है इस समय। मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि कोई कंपनी फ्रॉड है या कुछ कोलैप्स हो जाएगा या ख़त्म हो जाएंगी, बट उस हिसाब से सॉल्वेंसी नहीं है जिस हिसाब से आप देखना चाहते हो जब दो कंपनीज मर्ज होती हैं। तो उसके बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि हम अगर लक्ष्मी विलास बैंक को ले लेते हैं हम इसको बचा भी लेंगे, इनको खुद को भी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, और हो सकता है प्रमोटर स्टेक भी डाइल्यूट हो जाए। तो विन विन सिचुएशन लग रही है। तो मुझे लगता है कि लक्ष्मी विलास बैंक का टेक ओवर बहुत ही अच्छे न्यूज़ रहेगी लक्ष्मी विलास बैंक के डिपॉजिटर्स के लिए और इवन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने बहुत पैसा खोया है इस कंपनी में। तो गाइज ये तो रही सारी बैंकिंग के ऊपर बात, सारी बैंकिंग के ऊपर अपडेट जो आनी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं SBI कार्ड के IPO के बारे में। सब लोगों को इसके IPO के इतना वेट हो रहा था पैसा डालने के समय, और मैं कह के थक गया कि वैल्यूएशंस महंगी हैं। रिटेल कोटा सिर्फ 2-2.5 टाइम सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो अलॉटमेंट आप सबको आएगी जहाँ तक है। अगर आपने 10-10 अकाउंट से लगाया है तो 5 लॉट तो आपको मिल ही जाएंगे। तो अगर इसके अंदर अलॉटमेंट आती है तो अब इसका प्रीमियम कितना बचा है? तो प्रीमियम गाइस बहुत ही कम हो चुका है। पहले जो एक कंपनी 1,00,000 करोड़ पे लिस्ट होने की बात कर रही थी, अब शायद ये 80,000 से 85,000 करोड़ पे ही लिस्ट हो पाएगी, 80,000 to 85,000 करोड़। तो प्रीमियम काफ़ी कम हो चुका है। अगेन रिटेलर्स के पास भर के शेयर्स आएंगे, HNIs वगैरह ने भी काफ़ी शॉर्ट टर्म में पैसा ले के इसमें लगाया है। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी ख़राब IPO की ओपनिंग रहेगी। हो सकता है लिस्टिंग प्राइस पे खुले उससे थोड़ा मतलब ऊपर खुले, 5-10% और फिर नीचे गिर जाए, क्योंकि लोग उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे कैश में। और स्टॉक मार्केट की जिस हिसाब से हालत चल रही है उसको देख के तो हमें डर ही लग रहा है कि इस IPO में किसको पैसा बनेगा किसको नहीं बनेगा। एक चीज़ और है SBI कार्ड के IPO को लेके, उसका स्टेटस आप आज चेक कर सकते हैं। जहाँ तक है मार्च 11 को बोला गया है कि उसका स्टेटस आप चेक कर पाएंगे, तो आपको LinkedIn टाइम की वेबसाइट पे जाना है। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं अपना SBI कार्ड का IPO का स्टेटस। तो गाइज अब हम SBI कार्ड के अंदर स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि इसकी लिस्टिंग के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपको लेट से 800-850 पे मिलता है शेयर, तो मेरे ख्याल से मैं तो एग्जिट कर जाऊंगा, आपके ऊपर है कि आप उसको होल्ड करते हो नहीं करते। लेट से अगर इसके अंदर लिस्टिंग गेंस नहीं होते तब आपको क्या करना है? मेरे हिसाब से आप इस मार्केट में तो बेचिए मत, अगर आपको 700 के अराउंड मिलता है तो शायद आप सोचो कि मैं बेच दूँ, लॉसेस कम रहेंगे, 19 शेयर के हिसाब से कुछ खास लॉस आएगा नहीं। बट लेट से अगर इसकी लिस्टिंग ही 650 रुपये पे होती है, 600 रुपये पे होती है, मेरे ख्याल से होल्ड करिए। और अगर ये कंपनी 300-350 के अराउंड आती है, जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी बेरिश सिनेरियो है मेरा, बट वो एक ऐसा प्राइस है जिस पे मैं इसको ऐड करना चाहूँगा। क्योंकि अगर 750 रुपये पे इसकी वैल्यूएशन 70,000 करोड़ थी, तो 350-300 रुपये पे इसकी वैल्यूएशन आप समझो आधी से भी कम हो जाएगी। तो उस समय पे मैं कंफर्टेबल हूँ कि 300 करोड़ पे, वो सॉरी 300 रुपये पे मैं इसको ऐड करूँ, एंड मैं उसी प्राइस की वेट करूँगा इसके अंदर और ऐड करने के लिए। गाइज, अल्टीमेटली ये सारी जो सिचुएशन बनी है मार्केट के अंदर, वो बनी है कोरोना वायरस के चक्कर में। अब कोरोना वायरस का क्या रेजोल्यूशन निकलता है, वो तो एक्चुअली दवा ही चाहिए। अब अगर दवा आ जाती है कोरोना वायरस की, लेट से कोई इसकी वैक्सीन आ जाती है, कोई मेडिसिन भी आ जाती है जिससे कंट्रोल में आ जाए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, या फिर पर्टिकुलरली जैसे निमोनिया के अंदर हम देखते हैं कि निमोनिया को थोड़ा ईज ऑफ करने के लिए, बॉडी की कंडीशन बेटर करने के लिए मेडिसिन आती है, अगर वही इफेक्ट करने लग जाए अच्छे से इसको, तो डेफिनेटली मार्केट्स विल रीबाउंड और आपको जो एक वी शेप की रिकवरी चाहिए वो दिख जाएगी इसके अंदर। अगर वो नहीं होता तो फिर वो वी शेप की रिकवरी आती हुई हमें नहीं दिखती। तो सारा किस्सा कोरोना ने फैलाया है, कोरोना के चक्कर में सब पिटाई हो रही है मार्केट की, कोरोना के चक्कर में वॉलीटिलिटी बढ़ी है, कोरोना के चक्कर में काफ़ी सिचुएशन सामने आई है। कोरोना का जैसे ही सोल्यूशन निकलेगा, मार्केट्स विल रीबाउंड। अब इसके अंदर लेकिन एक, ये सारी तो मैंने बातचीत आपके साथ कर ली, आपका हो गया यार इसका कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन यही है कि जो मैं स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ मैं आपको वही बता सकता हूँ। व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम बाय करते जा रहे हैं शेयर्स, और हमने लेकिन पहले जैसे हम 5% के फॉल पे बाय कर रहे थे अपनी पसंद की कंपनीज, अब हम 10-10% के फॉल पे बाय कर रहे हैं। तो हमारी बहुत कंपनीज के अंदर 10-10% के फॉल आ भी रहे हैं, तो हम बाय भी कर पा रहे हैं। तो हमने इसको 4 tranches में बांट दिया है, सो दैट गिव्स अस अ लेवरेज ऑफ बाइंग इनटू दीस कंपनीज 4 times। तो एक बार तो हम एक तरीके से मान लीजिए बाय कर चुके हैं, फ्राइडे और मंडे को मिला के हमने काफ़ी बाइंग करी थी, अब हम वेट कर रहे हैं इसका और गिरने का। तो जैसे जैसे मार्केट गिरती रहेगी तो अब हमारे पास 3 मौके और हैं, तो 30% फॉल और पे हम बाई कर सकते हैं। इंडेक्स का फॉल आप देखोगे तो 20% का आ ही चुका है, अगर 20% इंडेक्स गिर चुका है और 30% मैं कह दूं कि और 10-10 के हिसाब से गिरेगा, तो ये कहीं 40-50% के बीच में जाके रुकना चाहिए वर्स्ट केस सिनेरियो। तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो को लेके ही चल रहे हैं, अपनी बाइंग भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। मेरा खुद का पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है इस समय, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, मार्केट्स गो अप एंड डाउन और उस हिसाब से ही आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है सिचुएशन। मैं खुद इस समय ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने सोचा था शॉर्ट मार देंगे इंडेक्स को, जब गिरेगा तो देखी जाएगी उसमें कमा लेंगे, बट ये वन साइडेड नहीं गिर रहा है अभी। हमें ये भी उम्मीद है कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी लाएगी अपनी और ईज करेगी, रेट्स कट करेगी, और 100 basis points के भी रेट कट हो जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। तो अगेन अगर रेट कट होते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर एकदम ऊपर भागेगा, जो एक्चुअली बहुत बुरी तरह गिर गया है इस समय। तो अब यही देखना है आपको कि आप कितने समय तक बाइंग कर सकते हैं। मेरी सलाह यही रहेगी कि रोज़ पोर्टफोलियो को देखना छोड़ दीजिए, जो कंपनीज आपको बाय करनी है उन पर फोकस करिए। रिसेशन का बिल्कुल सिनेरियो बन चुका है, बट अगर आप स्टॉक मार्केट्स में ऑप्टिमिस्ट नहीं हो तो फिर आप कभी पैसा कमा ही नहीं सकते। तो अगेन ऑप्टिमिज्म के हमें क्या संकेत मिलते हैं और हम ऑप्टिमिस्ट क्यों हों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हो क्या रहा है, क्योंकि चाइना की इतनी ख़राब हालत है, तो फिर कंपनीज को, कंट्रीज़ को रियलाइज़ हो रहा है कि हम एक कंट्री पे इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते। प्लस आपका जो लो टैक्सेस कर दिए गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगले 3 साल के लिए, या आपको जो अदर बेनिफिट्स मिले हैं जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट हो गया, तो उसके चक्कर में मुझे यही लगता है कि कंपनीज सोचेंगी कि यार चाइना पे थोड़ी डिपेंडेंस कम करके हम किसी और कंट्री में भी सेटअप करें मैन्युफैक्चरिंग, और जहाँ पे वो करेंगे वो मुझे लगता है इंडिया में ही करेंगे। जब आपकी यहाँ पे सेंटर में इतनी स्टेबल गवर्नमेंट है, आपके पास स्टेट्स हैं बहुत सारी जिनके अंदर बड़ी प्रो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, तो फिर आप क्यों नहीं यहाँ पे आके सेटअप करोगे। और जैसे जैसे सप्लाई चेन यहाँ पे शिफ्ट होएगी तो आप देखोगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होएगा, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो आपका लॉजिस्टिक्स का ही सेक्टर क्यों ना हो, इन सबको मुझे लग रहा है बहुत फ़ायदा होते हुए दिखेगा। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर एप्पल को आज लगता है कि मेरा चाइना में होने की वजह से इतना नुकसान हो रहा है, तो मे बी वो एक यहाँ पे भी फैक्ट्री सेटअप कर लेंगे, उसमें उनको कोई हर्ज नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस बहुत ढंग से करती हैं, तो हमें वही देखना है कि कौन सी कंपनी एक्चुअली बेनिफिट करेगी इसके अंदर, किसको ढंग से, किसी को ज़्यादा बेनिफिट होगा, किसी को कम बेनिफिट होगा, वो तो बिल्कुल समय बताएगा कि कौन सी कंपनी कितना कैपिटलाइज कर पाती है सिचुएशन में। मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा कि कोरोना वायरस जैसी बेकार चीज़ की वजह से हमें बेनिफिट मिले, बट रियलिटी जो है वो रहेगी, उसके अंदर ना आप फाइट कर सकते हो ना हम कर सकते हैं। तो रियलिटी को देखते हुए मुझे यही लगता है कि इंडियन इकोनॉमी में अगर कोरोना वायरस के केसेस नहीं बढ़ते, जो कि मुझे लग रहा है होली के बाद हो सकता है बढ़ भी जाएं अगर लोगों ने ध्यान ना रखा हो, लोग ज़्यादा ग्रुप्स में जाके सेलिब्रेट कर रहे हो होली, तो अगर वो सब किया होगा तो डेफिनेटली आपको दो हफ्ते में पता चली जाएगा जब वायरस से ज़्यादा डिटेक्ट होंगे। और अगर 1,000-2,000 केसेस हो जाते हैं वायरस के, तो फिर तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा कोलैप्स आएगा। फिर तो जो 9,000 का मेरा निफ्टी का टारगेट है बेयर साइड पे, वो भी ढंग से मैच नहीं हो पाएगा, उसको भी निफ्टी आउट परफॉर्म करता चला जाएगा और वो हो सकता है 8,000-7,000 कहाँ जाके रुके, फिर कुछ भी नहीं कह सकते। एज अ कंट्री आई थिंक कि स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं कि आप खुद अपनी प्रिकॉशंस लें, बट अगर हम देखें कि बेड्स वेड्स कितने हैं इस कंट्री में, तो वो हमेशा से शॉर्टेज रही है और वो शॉर्टेज हो सकता है हमें बड़ा परेशान करे। बट अगेन अगर हमारे यहाँ पे समर्स थोड़ी बेटर आती हैं इस बार, और सब कह ही रहे हैं कि इस बार तापमान बढ़ेगा, तो वायरस का स्प्रेड रुक ज़रूर सकता है, कम हो सकता है। वायरस एकदम मरता नहीं है कि 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो वायरस मर जाएगा, जैसे आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहे होंगे, उसका स्प्रेड कम हो जाता है। तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया। सार्स के टाइम पे भी आउटब्रेक यहाँ पे नहीं फैला था उस हिसाब से, तो हमें लग रहा है कि इस बार भी रुक जाना चाहिए। मौसम ऐसा है इस समय कि गर्मी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है, अगर वो सब होता है तो डेफिनेटली हमारे लिए एक अच्छा रहेगा, बट अगर नहीं होता है तो फिर वी विल सी कि हाउ थिंग्स प्ले आउट। एंड स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑफ योर वरीज व्हेन देयर इज अ कोलैप्स इन दिस सिस्टम, और जब आप देखोगे कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट से मैं वही कहूँगा कि इतनी फिक्र मत करिए, अगर वायरस फैलता है तो फिर आप अपनी पहले जान बचाओ, अपने ज़रा गुड्स वुड्स खरीद के घर पे आटा वाटा रखो, ताकि अगर कोई लॉकडाउन सा भी होता है तो 10-15 दिन आप आराम से चल सको। मुझे ऐसी खतरनाक सिचुएशन नहीं लग रही, बट इटली वगैरह में भी हो गया है, साउथ कोरिया में भी हो गया है। अगेन साउथ कोरिया और इटली का मैं आपको डेटा शेयर कर दूं, तो साउथ कोरिया के अंदर डेथ रेट 0.5 से 0.6% ही है, और जबकि साउथ कोरिया की स्क्रीनिंग वगैरह बहुत स्ट्रांग है, चाइना बहुत पास भी है उनके, फिर भी उनके यहाँ इतनी डेथ रेट कम है क्योंकि उनका मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है और उनके पास भी इतनी एजेड पॉपुलेशन टाइप नहीं है जो इफेक्ट हुई है। इटली ऑन दी अदर हैंड, जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी एजेड है, उसके अंदर आप देख रहे हो कि काफ़ी डेथ्स हो रही हैं कोरोना वायरस को लेके, और यही सारी बात है कि जो भी एजेड पॉपुलेशन है उनके अंदर दिक्कत है। लेट से वायरस इंडिया में फैलता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि उस लेवल पर फैले, बट लेट से ये एक हो जाता है, मतलब यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। एक एडवांटेज यहाँ पर क्लाइमेट का है जिसके चक्कर में स्लो फैलेगा, दूसरा एडवांटेज इसके अंदर यंग पॉपुलेशन का है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इस कंट्री में, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके थ्रू फैलेगा, इधर उधर होएगा, बट काफ़ी अब देखोगे रिकवर हो रहे हैं लोग। अगेन यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है 1.2 बिलियन पीपल, तो उस चक्कर में एजेड लोग काफ़ी हैं, बट एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वो इतने ज़्यादा नहीं है। तो मुझे वही लगता है कि अगर हम थोड़ा प्रिकॉशंस लें, हाथ अपने धोते रहें हर समय, मास्क पहन के रखें बाहर, तो मुझे लगता है कि ये वायरस फैलेगा नहीं, एंड वी विल बी एबल टू बीट दिस वायरस वेरी इजीली। तो गाइज आज की बातचीत में इतना ही, मैं आपको और थोड़े मनी क्राफ्ट की तरफ से अपडेट्स देना चाहूँगा। तो हम रिसर्च रिपोर्ट्स अपनी सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो सैम्पल रिसर्च रिपोर्ट हमने बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप जाएंगे मनी क्राफ्ट का फेसबुक पेज है वो, उसमें फ़ोटोज़ में जाइए, आपको माइंट्री और लालपथ की भी हमने डाली थी तो वो सारी अपलोडेड हैं, आप उसके अंदर क्वालिटी देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हम स्टॉक्स जो सेलेक्ट करते हैं उसमें पहले ही इतनी स्क्रीनिंग और फिल्टर्स होके आते हैं कि वो स्टॉक्स जिन पे हम रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं वो एक्चुअली आपकी प्रॉपर बाय कॉल होती है शेयर के अंदर, ऐसा नहीं होता कि हमने किसी भी स्टॉक पर बना दी। तो हमने क्या किया रिसर्च रिपोर्ट्स का कि वी आर स्टार्टेड ऑफरिंग 12+2 रिसर्च रिपोर्ट्स पर एनम, यानी कि 12 स्टॉक्स तो हम सेलेक्ट करके आपको देंगे, हर महीने एक देंगे, हो सकता है किसी किसी महीने दो भी दे दें, तो 12 रिपोर्ट्स तो हम आपको बना के देंगे, और दो आप अपनी पसंद की किसी भी स्टॉक पे हमसे बनवा सकते हैं, और उसके अंदर हम प्रॉपर आपको फंडा टेक्निकल एनालिसिस, फंडो टेक्निकल एनालिसिस जो नया टर्म चला है वो करके देंगे प्रॉपर, तो आपको पता रहेगा कि इसको बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या करना है। तो इसके प्राइसिंग वगैरह भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल रहा हूँ सारे। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि अगर आप एक भी स्टॉक हमसे उस रिपोर्ट का ढंग से बाय कर लेते हैं, या लेट से 12 बाय कर लो, तो आपकी कॉस्ट तो बहुत जल्दी रिकवर हो ही जाएगी, और आप पुरानी पास्ट पिक्स देख के समझ ही सकते हैं कि पिक्स कितनी स्ट्रांग आती हैं। तो मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ इसके। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो पोर्टफोलियो रिव्यू को लेके है। तो हम फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं, जैसे कि काफ़ी लोगों को पता होगा हमें काफ़ी पोर्टफोलियोज आए भी हैं, तो हम बड़े खुश हैं उससे। तो अगर आप अपना फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो प्लीज़ अगेन ईमेल आईडी मनी क्राफ्ट की डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाइए, उस पर सेंड करिए अपना पोर्टफोलियो, आप उसके अंदर अपना नाम, एज, आपने किस हिसाब से इन्वेस्ट किया था, आप ट्रेडिंग के लिए कर रहे थे, आप 10 साल के लिए कर रहे थे, आप पैसा जोड़ रहे थे, वो सब हमें बताइए, तो हम उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करके आपको भेजेंगे। अगेन दिस इज अ पोर्टफोलियो रिव्यू, उसके अंदर हम कोई बाय या सेल कॉल नहीं देंगे। हम आपको इसके अंदर यही बताएंगे कि आपकी जो अभी की कंपनीज हैं वो किस हिसाब से चल रही हैं, उनके अंदर आपको क्या एग्जिट करना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए। हम आपको ये नहीं बताएंगे पैसा किधर शिफ्ट कर लो, क्या करो, उसके लिए अगेन आपको हमारी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। बट ये पोर्टफोलियो रिव्यू से आपका आइडिया हो जाएगा कि हम किस पेज पे और आप किस पेज पे हो। तो अगर आप हमारे साथ हमारे पेज पे जंप करना चाहते हो तो फिर आप हमारे साथ हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो भी आपको अपनी कंपनीज के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं है कि आप हमसे फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू कराएं। तो अगेन फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू करवाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी का, उस पर आप सेंड करिए अपने पोर्टफोलियोज को। तीसरी चीज़ जो हो जाती है वो है टैक्स प्लानिंग को लेके। तो आपको पता होगा मार्च का महीना चल रहा है, आपका लास्ट कुछ दिन बचे हैं जब आप एक ELSS परचेस कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंडर, और आप 1.5 लाख का अपना टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं लिया। तो अगर आप वो टैक्स डिडक्शन लेना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कौन से ELSS में इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। अगेन वो ये हमारी पेड सर्विस रहेगी, ये फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू की तरह नहीं है। हम आपको बताएंगे कि कौन सा ELSS आपको परचेस करना है। तो अगेन ये बिल्कुल कमीशन फ्री प्रोडक्ट्स होंगे जो हम आपको रेकमेंड करेंगे। हमारा इंक्लिनेशन नहीं है किसी भी फंड हाउस की तरफ। हम आपकी नीड समझ के आपको एक ELSS सजेस्ट करेंगे और आप उसके अंदर अपना बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका भी हम बहुत ही मिनिमल वन टाइम चार्ज ले रहे हैं, जो अगेन डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो अगेन अगर आपको एक ELSS परचेस करना है तो आप मनी क्राफ्ट पे भरोसा कर सकते हैं। यहाँ की सारी एडवाइस जो आपको मिलेगी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, बिल्कुल सॉलिड होगी और बिल्कुल सही होगी। तो आपको अगर कुछ भी सर्विस हमारी लेनी है, तो मैंने आपको तीन सर्विसेज बताई हैं, तो इसके अंदर हो गया फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू, इसके अंदर हो गई हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स जो हम पब्लिश करनी स्टार्ट कर रहे हैं हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए, और इसके अंदर हो गई आपकी ELSS जो आपको परचेस करना है मार्च एंड में। आप इसके अंदर किसी भी चीज़ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक बार आप हमारी सर्विस लेके देखिए, हो सकता है आप हमारे साथ फ्यूचर में भी जुड़ना चाहें। बाकी गाइस चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं, तो मैं बहुत ही इसमें खुश हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस स्पीड से बढ़ेंगे, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इस चैनल को, और मैं हमेशा कोशिश यही रहेगी मेरी कि बेस्ट इन्फॉर्मेशन, बेस्ट न्यूज़ एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल मैं आपके सामने लेकर आ सकूं, और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों तक पहुंच रही है मेरे थ्रू वो इसी तरीके से बढ़ते रहे। आप वीडियोस को शेयर करिए ताकि और लोग भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। और मैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट की वेबसाइट भी बहुत जल्दी लाइव कर दूंगा, तो उस वेबसाइट पे जाके अगेन आप देख सकते हैं कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट का मिशन क्या है, बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये सब आप देख पाएंगे उसके अंदर। और एक कम्युनिटी मैं बिल्ड करना चाह रहा हूं, तो अगर आपके पास कोई सजेशन है उस कम्युनिटी को कैसे बिल्ड किया जाए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को भी थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं, इसमें मैंने काफ़ी अपनी तरफ से बातचीत करी है, बट बातचीत एक साइड से नहीं, दो साइड से होती है। तो अब आपकी बारी है कमेंट सेक्शन में अपने इन्फॉर्मेशन, अपनी थिंकिंग, अपनी थॉट प्रोसेस वो सब बताने की, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताने की, तो वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।